श ग्लानिर भवति भारत अद्युतानं मधर्मश तदात्मानं श्रीजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय शम्भभामि युगे युगे शम्भभामि युगे युगे हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare.
आप सबका स्वागत है अपने इस साप्ताहिक श्री कृष्ण भावनामृत कार्यक्रम में और एक बार पुनः मैं आप सबका आज का मंगल प्रभात पुनीत की आशा करते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
एक बार पुनः आप सबको हमारे हरे कृष्ण मंदिर में आने की निमंत्रण देते हैं। याद रहे हर रविवार को हरे कृष्णा मंदिर में विशेष पब्लिक प्रोग्राम होता है जो 11:30 बजे भगवान की आरती और भजन के साथ संपन्न होता है और इसके बाद में 12:30 बजे भगवान की आरती होती है। आरती के बाद में 1 घंटे का प्रवचन होता है जो भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर निर्धारित रहता है। उसके बाद में हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी की आरती होती है। आरती के बाद में महाप्रसाद का वितरण होता है जो 2:30 बजे होता है। आइए आप अपने परिवार और मित्रों से विदा करके भगवान के दर्शन के लिए उनके परम परम पावन पावन कथा को सुनिए और प्रसाद को भी पाइए। आज मैं श्री भगवान नाम का चिंतन पर जो विचार विषय लेकर के आए थे उसको पुनः जारी करते हैं। कुछ लोगों का यह शंका है और कहते हैं कि आजकल नाम लेने वाले तो बहुत लोग देखे जाते हैं परंतु उनकी दशा देखते तो ऐसा मालूम होता कि उनको कोई लाभ नहीं हुआ है। जिस नाम के एक बार उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होना बतलाया जाता है, उस नाम की लाखों बार लेने से उच्चारण करने से भी लोगों के पापों में प्रवृत्त और दुखी देखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसके उत्तर में पहली बात तो यह है कि लाखों बार नाम की आवृत्ति जप तो करते हैं लेकिन धोखे से समझ ली जाती है कि उनका जप हो गया। दूसरा कारण यह है कि उनके नाम में यथार्थ श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। नाम के इस महात्म्य में उन्हें स्वयं ही संशय है। भगवान गीता में कहा है संशय आत्मा विनश्यति, इसीलिए उन्हें पूरा लाभ नहीं होता है। भजन में श्रद्धा ही फल सिद्धि का मुख्य साधन है। अवश्य ही भजन करने वाले में श्रद्धा का कुछ अंश तो रहता ही है। यदि श्रद्धा का सर्वता अभाव हो तो भजन में प्रवृत्ति ही ना, उनमें फायदा ही ना हो। बिना श्रद्धा हुए किसी कार्य विशेष में प्रवृत्त होना बड़ा कठिन है, उनका सफल होना बड़ा कठिन है, में फायदा होना बड़ा कठिन है। खैर उनके श्रद्धा का कुछ अंश तो अवश्य होना चाहिए, परंतु श्रद्धा के उस शुद्ध अंश की अपेक्षा संशय की मात्रा कहीं अधिक है। श्रद्धा कम है लेकिन उन संशय यानी कि जो शास्त्रों में बताए गए आचार्य जो विषय बताते हैं क्या वह सच है कि नहीं, उसमें संशय है लोगों को, इसलिए वास्तविक फल से वंचित रहना पड़ता है। एक समय शिवजी माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों लोग गंगा में नहा नहा कर हर हर करते हुए चले जा रहे हैं, परंतु प्रयाण सभी दुखी और पाप प्रयाण लगते थे। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य के साथ शिव जी से पूछा कि देव अधिदेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है रहा? शिव जी ने कहा, प्रिय गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य होकर के कहा कि स्नान कैसे नहीं किया, सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर में भी शरीर भी सुखी नहीं है। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बारह बरसात हो गई होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गए। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी वह निकल नहीं सकता। पार्वती जी को यह समझा कर गड्ढे के पास में बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अक्षमात गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा ही ने नाक निकाल कर इनके प्राण बचावे और मुझे आशा है कि सहायता करे। शिव जी ने यह सब और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में मुझे निकालने को तैयार हो जाते हो तब इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो, यदि आप निष्पाप है तो इनको हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना करके शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं, सुंदरी युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया, कई लोग लोक लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती को यह सुनाकर भी कह दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हो, चलो मेरे साथ में आपके देखभाल करूंगी। कुछ दयालु सच्चित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाह, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में स्नान ना कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ ना जल जाए। बुड्ढे को निकालने जाकर इस स्त्री के कथानुसार हम स्वयं वश मना हो जाए। सुतरा किसी का साहस नहीं हुआ, सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया, उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी क्षण बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है, देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ, भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं, तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बुड्ढे को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझ करके अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिए, उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों से इस एक ने ही वास्तव में गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए नाम ग्रहण करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि नाम ग्रहण व्यर्त है बेकार जाता है, नहीं, नाम का फल अवश्य होता है परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं होता है। दम्भार्थ नाम देने लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं, उनके पापों का नाश भी होता ही है, परंतु अनंत जन्मों के सचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते हैं। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है, साधक का सकाम भाव। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दामों में पर बेच देते हैं। सिर की मामूली दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम 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 हरे कृष्णा कहते हैं। 100-150 रुपये के कमाई के लिए राम राम नाम भगवान का नाम लेते हैं। स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए भगवान का नाम लेते हैं। मान बड़ाई पाने के लिए राम भगवान का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं। संतान सुख के लिए भगवान का नाम कहते हैं। फल यह होता है कि हम भगवान का नाम लेने पर भी कामनाएं तो के साथ ही लुटाने वाले मुर के समान जैसे के तैसे ही रह जाते हैं। चलने में जितना भी पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा, हमारा अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छेदों से चलनी हो रहा है, इससे कुछ भी ठहरता नहीं है। भगवान का नाम का फल कैसे हो, प्यास लगी हुई है, जगत में सुख की पिपासा किसको नहीं है, पवित्र जल का भी झरना झर रहा है, राम नाम के भगवान नाम के झरने का प्रवाह सदा ही अबाधिक रूप से बढ़ता है बहता है, परंतु हम अभागे इस झरने के आगे अंजलि बांध कर जल ग्रहण नहीं करते, हम उसके आगे रहते हैं हजारों छेदों वाली छलनी जिसमें ना तो कभी पानी ठहरता है ना हम ही हमारी प्यास ही बुझती है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी नाम की असली फल अत्यधिक सुख से हम इसी प्रकार वंचित रह जाते हैं। प्रथम तो कोई भगवान नाम लेता ही नहीं है, और यदि कोई लेता है तो वह सकाम भाव से धन संतान मान बड़ाई की वृद्धि के लिए लेता है। नियम अनुसार फल में जहाँ का तहाँ ही रहना पड़ता है, परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम से भी फल तो होता ही है, सकाम कर्म की सिद्धि भी हुई होती है और आगे चलकर भगवत भक्ति भी की प्राप्ति भी होती है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांत प्रेम हो जाना। एकांत प्रेम होने के बाद प्रेम ही मिलने में जरा सा भी विलंब नहीं होता है। जैसे ध्रुव को और विभीषण को राज्य की भी प्राप्ति हुई और भगवत प्रेम की भी प्राप्ति हुई। भगवान ने गीता में इसलिए अर्थार्थी भक्त को भी उदार और पुण्य आत्मा बतलाया है, और अंत में मद भक्ता यान्ति माम अपि कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगवत भक्ति करने वाले को अपनी प्राप्ति कही है। क्योंकि सकाम भाव से अन्य सब की आशा छोड़कर, अन्य सब का आश्रय त्याग कर केवल भगवान की भक्ति के प्रयाण होना भी बड़े भारी पुण्य का फल है। इतो सकाम भाव से भगवान के नाम ग्रहण करने वाले लोग भी बड़े पूज्य और मान्य माने जाते हैं, परंतु उनको सकाम भाव के प्रतिबंध कारण नाम के वास्तविक फल नामी के प्रेम की या स्वयं नामी के प्राप्ति में विलंब अवश्य होता है, समय अवश्य लगता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है हो गया है कि नाम के फल तो अवश्य होता है, परंतु अश्रद्धा अविश्वास और कामना के कारण उसके असली फल की प्राप्ति में देर हो जाती है। यदि साधक इस अपने दोष से होने वाले देरी का दोष नाम पर लगाकर उसे अर्थवाद कहता है तो यह भी उसका अपराध है। और नाम के 10 अपराध भी बतलाए गए हैं। सत्पुरुषों की निंदा करना, नामों में भेदभाव करना, गुरु का अपमान करना, शास्त्र निंदा, हरि नाम में अर्थवाद, केवल स्तुति मात्र है ऐसी यानी कि विश्वास नहीं करना, कल्पना समझना, नाम का सहारा लेकर के पाप करना, धर्म वर्तक दान और यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना, अश्रद्धालु को नाम की फायदा सुनाना, उनको उपदेश देना, नाम का महत्व सुनकर भी उसमें प्रेम ना करना, और मैं मेरे तथा भोग आदि विषयों में लगे रहना। यदि प्रमादवश इसमें से किसी तरह का नाम अपराध हो जाए तो उससे छुटकर शुद्ध होने का उपाय भी पुनः नाम कीर्तन ही है। भूल के लिए पश्चाताप करते हुए नाम का कीर्तन करने से नाम अपराध छूट जाता है, और पद्म पुराण का वचन है कि नाम अपराध युक्ता नाम नामेव अरंतेधम अविश्रांत प्रयुक्ता ने तान्येव कार्तव कर करना कराणी चा। नाम अपराधी लोगों के पापों को नाम ही हरण करता है। हमारे नाम के अपराध करने वालों के पापों का नाश नाम ही करता है। निरंतर नाम के तरह से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नाम के यथार्थ महत्व को समझकर जहां तक हो सके नाम लेने में कदापि इस लोक और परलोक में भोगों की जरा सी भी कामना नहीं करनी चाहिए। यद्यपि ऊपर लिखे बताए गए अनुसार नाम जप से कामना सिद्धि के लिए सिवा अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवत भक्ति रूप विशेष फल भी मिलता है, परंतु नियम यही है कि जैसी कामना हो संगोपांग कर्म होने पर वैसा ही फल मिल जाएगा। जो लोग भगवान नाम का साधारण बातों में प्रयोग करते हैं वे वास्तव में भगवान नाम की अपार महिमा में महिमा से सर्वथा अनभिक्ष अनजान है या उस पर उनका विश्वास नहीं है। जो रत्न के मूल्य से अनभिक्ष जिसको पता नहीं कि रत्न की क्या मूल है वही उसे कांच के मूल पर बेचने लगता है। भगवान नाम के मूल्य पर एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा कि वत्स तेरी मति भगवान में है, तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा प्रयान है, कोई तरकी नहीं है, साधन में आलसी नहीं करता है, शास्त्र के वचनों में विश्वासी है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष नहीं करता है, सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से डरता है, संतों का उपासक है और जिज्ञासु, इसलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। यूं कहकर महात्मा ने उसे के कान में धीरे से हरे कृष्णा महामंत्र कह दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धालु भक्त इस महामंत्र का जप करने लगा। एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया जो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम कृष्ण हरे हरे या हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पुकारते चले आ रहे थे। सुनता तो रोज ही था परंतु कभी इस ओर उसका ध्यान ही नहीं गया था। आज ध्यान जाते ही उसके मन में यह विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते हैं, मुझसे कहा भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी लोग जानते, हजारों मनुष्य राम राम कृष्ण हरे कृष्ण पुकारते हुए चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। वह अपने घर न जाकर के सीधा गुरु के समीप गया। महात्मा ने कहा कि वत्स आज इस समय कैसे आए। उसने अपना संशय सुनाकर कहा कि प्रभु मेरे समझने में भ्रम हुआ है या इसका कोई और मतलब है, अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा कि भाई तेरे प्रश्न का उत्तर पीछे दिया जाएगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली से एक चमकते हुए कांच की गुस्से गोली निकाली और उसे भक्त के हाथ में देकर कहा कि बाजार में जाकर इसकी कीमत करवा कर लौट आया। बेचना नहीं, सिर्फ कीमत जानना, सावधान कीमत हांकने में कभी भूल ना हो जाए। भक्त श्रद्धालु था, उसने अपने गुरु की बात को रख ली और अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक साग बेचने वाली मिली। भक्त ने गुरु की चीज से दिखाकर कहा कि इसकी क्या कीमत है। साग बेचने वाली पत्थर की चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती है। उसने कहा सिर दो सिर आलू या बैगन ले लो। वह आगे बढ़ा, एक सुनार की दुकान था वहां ठहरा, सुनार को गोली दिखाकर पूछा भाई इसकी क्या कीमत होगी। सुनार ने हाथ में लेकर के देखा, उसे अच्छा पुखराज यानी नकली हीरा समझकर 100 रुपये देने को कहा। भक्त की भी दिलचस्पी बढ़ी, वह और आगे बढ़ा, एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ से होगा, है तो पुखराज ही या नकली हीरा है, परंतु हीरा सा लगता है, बड़े घर में नकली भी असली ही समझा जाता है। उसने 1000 रुपये में मांगा। भक्त ने सोचा कि हो ना हो है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। वह और आगे बढ़ा और एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने परीक्षा की और तो उसे हीरा ही मालूम दिया, परंतु इतना बड़ा और ऐसा हीरा कभी उसने देखा ही ना था, इसलिए उससे कुछ संदेह रहा। तथापि उसने कहा, लाख रुपये में मांगा। भक्त बेचना नहीं है ऐसा कहा करके सबसे बड़े जौहरी की दुकान में गया। गुरु के पास आया था तब तो उसे जौहरियों के पास जाने की साहस ही नहीं पड़ता था। वह स्वयं उसे मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों ज्यों कीमत बढ़ती गई त्यों त्यों उसका भी साहस बढ़ता गया। बड़े जौहरी से ने हीरा को देखकर कहा कि भाई यह तो अमूल्य है, इस देश की सारी जवाहरात इसके मूल्य में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होगा, इसे बेचना नहीं। यह सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी है। वह लौटकर महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज इसकी कीमत तो कोई कर ही नहीं सकता है, यह तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको यह किसने बताया। भक्त ने कहा कि प्रभु मैंने यहाँ से बाजार में जाकर पहले साग वाली से पूछा तो वे शेर दो शेर साग देना स्वीकार किया। सुनार से 100 रुपया कहे, सुनार ने 100 रुपया कहे, महाजन ने 1000 का, जौहरी ने लाख और अंत में सबसे बड़े जौहरी ने इसे अमूल्य बतलाते हुए कहा कि यदि देश की सारी जवाहरात इसके बदले में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता है। महात्मा ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया और भक्त ने कहा कि महाराज अब मेरी शंका निवारण कीजिए। महात्मा ने कहा भाई मैं तो तुझे शंका निवारण के लिए दृष्टांत सहित उपदेश दे चुका हूँ, तू अभी नहीं समझा इसलिए फिर समझाता हूँ। इस रत्न की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तू दो शेर के बदले 5-7 शेर साग के मूल्य के पर इसे बेच ही देता, आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। इसी कारण भगवान के नाम, श्री राम का नाम, श्री कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा महामंत्र भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और न इसका मूल्य ही सबको जानते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा महामंत्र सो तो मुफ्त में सभी को बतला दिया। ये अब गुप्त नहीं रहा क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सबको फायदा हो, वे उनके धाम को वापस आए, उनके पास में वापस आए। चीज हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह भगवान के नाम कि असली महत्व को भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो भगवान का नाम का व्यवसाय करते हैं वे बेचारे बड़े दया के पात्र हैं, क्योंकि वे इस अमूल्य धन भगवान नाम को कौड़ी के मूल्य पर बेच देते हैं। इसी से परम मूल्यवान रत्न को 2 शेर साग के बदले में बेच देने वाले मूर्ख के समान वे सदा ही भक्ति और प्रेम में दरिद्र ही रहते हैं। भक्ति और प्रेम के हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते हैं और परमात्मा को प्राप्त किए बिना दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता है। दुखों के अत्यधिक निर्वृत्ति परमात्मा को प्राप्त करने में ही है और परमात्मा की प्राप्ति परम साधन से भगवान नाम है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ में जप कीजिए मित्रों। चलो एक भजन सुनते हैं रानी और एंजल से। Thank you.